ओम शांति। हम सभी आदरणीय सतीश भाई जी का एक हाथ की ताली से अभिवादन करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। सतीश भाई जी हमको क्लास कराए उससे पहले उनका परिचय में दे देना चाहूंगी। आपका लौकिक नाम सतीश चंद्र श्रीवास्तव है। आपका जन्म सुल्तानपुर जिले में हुआ और अलौकिक जन्म फैजाबाद, जिसको वर्तमान समय अयोध्या कहते हैं, और उसके रेवाना गांव में आपकी आध्यात्मिक पालना हुई। संपूर्ण परिवार आपका ज्ञान में है। आपने 12 क्लास तक की लौकिक पढ़ाई फर्स्ट क्लास पोजीशन में पास की है, लेकिन ज्ञान का रंग आपको इतना तो चढ़ गया जो आपने आगे की पढ़ाई कैंसिल करके और अपना जीवन बाबा के यज्ञ में संपूर्ण समर्पित करने का फैसला कर लिया। पिछले 30 वर्षों तक आपने यज्ञ की महान विभूतियों, दादियों, वरिष्ठ भाइयों आदि के भोजन निर्माण की सेवा की। 2000 के साल से आप आरएआरएफ की कला एवं संस्कृति प्रभाग के मुख्यालय संयोजक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। जब से ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ तभी से आपको गीत संगीत में बहुत अभिरुचि रही है। मुख्यालय के आप विभिन्न कार्यक्रमों में मधुरवाणी ग्रुप के प्रणेता एवं प्रभारी के रूप में नित्य अपनी सेवाएं प्रदान करते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप देश की अनेक जानी मानी हस्तियों द्वारा सराहना प्राप्त हुई है। आपने लगभग 5000 से भी अधिक गीतों की रचना की है। कितने? जितनी सृष्टि चक्र की आयु है ना, उससे भी ज्यादा, जिसमें से करीब 600 गीतों को बॉलीवुड के पार्श्व गायकों ने अपना स्वर दिया है, जिसमें लता मंगेशकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, अनुराधा पौंडवाल, कविता कृष्ण मूर्ति, साधना सरगम, दिलराज कौर, श्रेया घोषाल आदि गायिकाओं और महेंद्र कपूर, यशुदास, जगजीत सिंह, सुरेश वाडेकर, अनूप जलोटा, मनहर उदास, पंकज उदास, सोनू निगम, उदित नारायण, मोहम्मद अजीज आदि आदि गायकों ने आपकी रचना को स्वर दिया है। आप कवि, लेखक, गीतकार, संगीतकार, वक्ता, मंच संचालक के साथ साथ प्रभु प्रेमी राजयोगी भी हैं। और आपकी विशेषता रही है, कभी भी आपने अमृत वेले का योग मिस नहीं किया है। मुख्यालय में आने वाले देश विदेश के हिंदी न जानने वाले बाबा के बच्चों को आप हिंदी भाषा का प्रशिक्षण भी देते रहे हैं। आप में मधुरता, सरलता, संतुष्टता आदि गुण सहज सरल रूप से विद्यमान है। विदेशी भाई बहने आपको बड़े प्यार से, नाम क्या है भाई सबका? सतीश भाई बोलते हैं, अर्थात सतीश भाई। आप दिव्य धारणाओं समेत मन वचन कर्म से भारतवर्ष सहित संपूर्ण विश्व को स्वर्ग बनाने हेतु कृत संकल्पबद्ध हैं। ऐसी महान विभूति हम सभी के बीच में विराजमान है, उनसे निवेदन है, आज के विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। औपचारिकता के लिए ये बायोडाटा देना पड़ता है, लेकिन सुन करके खुद ही हंसी आती है। कि क्या क्या सुनाया जाता है। बाबा के बच्चों कहाँ हैं? नहीं नहीं ठीक है। हमारी बहनें जब हमारी तारीफ करें तो लगता है तारीफ की योग्य तो ये है, हम तो बेवजह ही बिना उसकी चुंगी ले लेते हैं रास्ते में। तो एक बार हमारी बहनों के लिए, इनके सम्मान के लिए जो इतनी तारीफ करती हैं, इनको बहुत बहुत बधाई। अमृत वेला बुला रहा कोई, मीठे बच्चे कहकर जगा रहा कोई, किरणों की बाहों में समा रहा कोई, मीठे बच्चे कहकर भुला रहा कोई। आवाज ऐसी न पहले सुनी थी, मीठे सरगम के सुरों से सजी थी, दूसरी ही दुनिया दिखा रहा कोई, मीठे बच्चे कहकर बुला रहा कोई, अमृत वेले जगा रहा कोई, मीठे बच्चे कहकर बुला रहा कोई। चेहरे पे खुशियां आंखों में खुमारी, रत्नों से झोलियां भर गया हमारी, मीठी मीठी मुरली सुना रहा कोई, अमृत वेले बुला रहा कोई, मीठे बच्चे कहकर जगा रहा कोई। होके मुजस्सिम ख्यालों को संवारे, क्या सोते जगते हरदम हमारे, सपने सच सारे बना रहा कोई, अमृत वेले बुला रहा कोई, मीठे बच्चे कहे सुना रहा कोई। सबसे वो दूर पर मेरे तो करीब है, मुझे देख उसको भी नाज मेरा नसीब है, और मीठे बच्चे कहकर भुला रहा कोई, मेरी दुनिया को सजा रहा कोई, अमृत वेले भुला रहा कोई, मीठे बच्चे कहकर जगा रहा कोई, किरणों की बाहों में समा रहा कोई, अमृत वेले भुला रहा कोई, भुला रहा कोई। यूं तो सारा संगम युग अमृतमय है, सारा संगम युग वरदानी वेला है, अमृत वेला है, फिर भी ब्रह्म मुहूर्त का समय सबके लिए भी और हम ब्राह्मणों के लिए बहुत ही विशेष है। अमृत वेला अमर बनने का वरदान प्राप्त करने की वेला है, बाप दादा द्वारा अपॉइंटमेंट मिला है, भगवान ने अपने मिलने के लिए स्वयं अपॉइंटमेंट दिया है, अमृत वेला वरदानों से झोली भरने की वेला है। बाबा कहते हैं जो लेना चाहो खुले भंडार है, जितना चाहिए उतना ले लो। अमृत वेला हमारी दिनचर्या का आदि समय है, यदि हमने अपने फाउंडेशन को मजबूत बना लिया तो सारे दिन के लिए हमारा चार्ट, हमारा व्यवहार, हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। अमृत वेले की बाबा ने इतनी महिमा की है, इतनी महिमा की है, अगर वो सुना जाए, किताब भी है अमृत वेले की, उसको आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि बाबा अमृत वेले को कितना तवज्जो देते हैं। बाबा के बनने के बाद यदि हम तीव्र वेग से अपने पुरुषार्थ को ऊंचाइयां प्रदान करना चाहते हैं तो अमृत वेले के महत्व को अपने बुद्धि में जरूर रखना चाहिए। ये स्वतः सिद्ध है। ममा को कहते हैं कि ममा सवेरे सवेरे 2 बजे उठ जाती थी और लगातार छतों पर कहीं अलग एकांत में बाबा की याद की धुनी में मस्त हो जाती थी। ममा ममा बनी उसका फाउंडेशन रहा अमृत वेला। बाबा अमृत वेले बैठते थे, मुरली नोट भी करते थे, मुरली तैयार करते थे। कोई सवेरे सवेरे पहुंच जाता था तो पूछते थे बाबा क्या कर रहे हैं, तो बाबा कहते बच्ची देख नहीं रही हो, बच्चों के लिए हलवा बना रहा हूं गरम गरम, ताजा ताजा हलवा तैयार कर रहा हूं। और ऐसे करके बाबा सवेरे बहुत पुरुषार्थ का या कहो बच्चों के लिए और सकास देने का सवेरे काम करते थे। मैंने दादी प्रकाशमणि को देखा, दादी का बहुत ध्यान था अमृत वेले के ऊपर। मैं 83 में देख रहा था, 78 में जब आया तो मैं हिस्ट्री हॉल में बैठा योग कर रहा था। रात को 11 बज गए, मैं जा रहा था रात को सोने के लिए। उस समय देखा कि दीदी, बड़ी दीदी, मनमोहिनी दीदी सिरोही से आई, कहीं सेवा करके दूर से आई। रात को 11 बज गए, सोते सोते 11:30 बज गए होंगे। सवेरे देखता हूं तो मैं बैठा याद में 4 बजे, उसके पहले बैठा तो दीदी बैठ गई थी, एक तरफ दीदी मनमोहिनी, एक तरफ दादा विश्वरतन। वो मैं दृश्य देखता हूं तो भुलाए नहीं भूलता है। और ये दोनों हमारी दिनचर्या में, अमृत वेला को अच्छा बनाने में ये हमारे आदर्श रूप रहे। उनको देखकर मैंने संकल्प किया अब मैं मधुबन निवासी बन रहा हूं, अब से लेकर मुझे कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करना है। बजा लीजिए, कोई बात नहीं, ये एक बात नहीं है, 45 वर्ष हो गए अमृत वेले को महत्व देना, जो बाबा ने महत्व देने के लिए कहा है। एक शब्द में कहा जाए, अपना अनुभव कहूं तो आपके सामने जो विराजमान हूं, जो कुछ भी हूं, वो अमृत वेले को, इस नियम को, फाउंडेशन को इतना पक्का किया कि इसने हमारी दिनचर्या को बड़ी अच्छी ऊंचाइयां प्रदान की, बुलंदियां प्रदान की, और तमाम खूबियों से नवाजा है। और सचमुच जो भी उपलब्धि हुई उसका एक बहुत बड़ा आधार अमृत वेला बना है। और ये दूसरा हमारा सौभाग्य रहा कि वैसे स्थान हमारी स्थिति को बना देता है, तो जब शुरू में आया लगन में मगन हो जाता था, अमृत वेला बहुत ध्यान देता था। जब देखा कि इसकी बहुत अच्छी रुचि है तो मुझे सेवा मिल गई सामने बैठने की, इस सीट पर जो बगल में सीट है इस पर मैं कितने सालों साल यहां अमृत वेला बैठ करके एकदम बाबा के पास बैठ जाना और बाबा से सर्वशक्तियां लेना, इतनी ऊंचाई पर होना, सारे विश्व को सकाश देना, ये हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन गया। और यहां से अमृत वेला करने के बाद पूरा जो सकाश देना, वाइब्रेशंस देना, मधुबन के एक एक कण कण का, एक एक जर्रे जर्रे का जो यहां पर जो उसका आनंद है, जो यहां पर वो जो जज्बा है बाबा मम्मा का, दादियों का, और जो रोम रोम में जो रूमानियत है, जो रूहानियत है, उसका जो असर है वो इतना अच्छा असर रहा कि मन करता है एक एक जगह, एक एक पल यहां बैठकर, यहां बैठूं और इनके वाइब्रेशंस लूं, इनसे ताकत भरूं, इनसे यहां बैठूं। और उसने इतना हमको मनोमय किया, इतना भावात्मक बनाया, भावुकता से भर दिया, भावनाओं से भरा कि वह शब्दों में गीतों की पंक्तियां बनकर प्रस्फुटित होती रही। यहां से उठने के बाद मॉर्निंग वॉक करना और एक नक्की लेग के पूरा एक बार सवेरे प्रातः भ्रमण कर लिया और उसमें बाबा से पूछता हूं बाबा आज के क्या संकल्प हैं, तो जो अनुभव में आते हैं, योग के अनुभव आते हैं और मुरली के शुरू में जो सेवाधारियों की यहां सुनाई जाती है वो लेकर के जब बाहर निकलता हूं तो बाबा की इतनी अच्छी अच्छी प्रेरणाएं मिलती हैं कि ये तो 5,000 गीत कहा जाता है कहने में, लेकिन इनकी संख्या तो 8-10 हजार में होगा, 6,000 तो गीत हमारे पास लिखे रखे हैं, इन सब गीतों के पीछे जो मोटिवेशन मिला, एक एक लाइन में जो बाबा ने पावर भरी, वो मेरी देन नहीं है। मैं सचमुच बताऊं, इनके पीछे एक एक जो चीज आ रही है, मुझे भी ताजुब होता है, चीजें कहां से आ रही, ये कौन दे रहा है, किसकी प्रेरणा है, कौन सुना रहा है, कौन लिखा रहा है, कौन कर रहा है। और हर एक गीत के पीछे, कई भाई बहने पूछते भी कि इसके पीछे जब गीत आप बना रहे थे तो क्या भाव था, क्या संकल्प था, आप किस समय पर थे, आप क्या कर रहे थे, कब आया ये गीत, तो उनके पीछे बड़ी बड़ी कहानियां हैं। आजकल तो एक अपने शो में YouTube पर भी देखेंगे आप, और उसमें भी आया है तो एक शो चलता है, उसका नाम है आपकी फरमाइश, शायद आप सबने सुना होगा। तो उसमें मैं गीतों की कहानी भी सुनाता हूं, जब आप कोई फरमाइश करते हैं, हाँ देखो हाथ उठा रहे हैं, सब सुना है ना आप सबने, देखा होगा। तो उसमें बताता हूं कि ये गीत को मोटिवेशन कहां से मिला, कैसे निर्माण हुआ, किन पलों में हुआ, क्या कर रहा था, फिर इसको गाया किसने, बनाया किसने, संगीत किसने दिया, कैसे, इसके पीछे की क्या कहानी है, पब्लिक को भी बताता हूं, अपने बीके भाई बहने तो सुनते ही। कहने का भाव ये है, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं, मेरे कहने का भाव ये है कि अमृत वेला हमारी दिनचर्या का इतना प्रमुख समय है, मुख्य समय है, कि यदि अमर बनना है, पूरे संगम युग में अमर बनना है, तो अमृत वेले को तवज्जो दें, उसको महत्व दें, उसको सफल बनाए, और इसको इतना अच्छा सुसज्जित कर लें, इतना शक्तिशाली बन जाए कि दिनचर्या में किसी और शक्ति की जरूरत ही न रह जाए। प्रायः बाबा कहा करते हैं कि बच्चे अमृत वेले में बैठता हूं, मेरे पास बैठ जाओ, मेरे सामने बैठ जाओ, मुझसे दृष्टि लो, मुझे देखो, मुझसे बातें करो, मुझे प्यार करो, और मुझसे इतना प्यार ले लो कि किसी भी देहधारी के प्यार की आवश्यकता न रहे। नहीं तो हमारा मन बड़ा कोमल होता है, बार बार ढूंढता रहता है, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, हमारा मन जो है वो भटकता रहता है, ढूंढता रहता है, कोई तो करे, मान के लिए, सम्मान के लिए, प्यार के लिए वो ढूंढता रहता है। अमृत वेले जब हम उठते हैं तो अमृत वेले अपने आप को बाबा के प्यार में समा ले। सबसे पहली बात, अमृत वेले को यदि सफल करना है तो स्नेह मूर्त बन जाए, स्नेह में समा लें अपने आप को, बाबा के स्नेह में। जिसका जितना बाबा से स्नेह होगा और स्नेह में जितना हम लवलीन हो जाएंगे, उतना ही हमारा अमृत वेला शक्तिशाली बनेगा। तो स्नेह एक ऐसा विषय है कि बाबा कहते हैं बच्चे सवेरे सवेरे मेहनत मत करो, और बाबा आपको मेहनत में नहीं देखना चाहते, मोहब्बत में देखना चाहते। तो पहला है स्नेह में समा जाएं, अमृत वेला हमारा शक्तिशाली बने। कुछ मैं आपको टिप्स देता हूं और कुछ चीजें परहेज करने के लिए बता रहा हूं, कुछ चीजें सावधानी में रखने, सावधान रहना है। पहली बात, अमृत वेले को शक्तिशाली बनाने के लिए उसकी पूर्व तैयारी है कि यूं हमारी दिनचर्या जितनी अच्छी होगी तो दिनचर्या का प्रभाव हमारे अमृत वेले पर पड़ता है, और अमृत वेले का प्रभाव हमारी दिनचर्या पर पड़ता है। इसलिए दिन की दिनचर्या में जितना हो सके हम सकारात्मक रहें, रचनात्मक रहें, अपने आप को ज्ञान योग से संपन्न करते रहें, श्रीमत पर चलते रहें। जैसा आज बाबा की पूरी मुरली थी, बच्चे आसुरी मत, देहधारियों की आसुरी मत है, सब मत छोड़कर, मन मत छोड़कर ईश्वरीय मत पे चलो। जब तक ईश्वरीय मत पे नहीं चलेंगे तो बुद्धि का भटकना बंद नहीं होगा। ढेर सारे भाई बहने पूछते हैं भैया क्या करें, मन लगता नहीं है, याद होता नहीं है, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। आज बाबा जवाब दे रहे हैं, बुद्धि क्यों भटकती है? क्योंकि एक बाप में ऊंचे ते ऊंचे बाप की मत व ईश्वरीय मत में पूरा भरोसा नहीं है, पूरा निश्चय नहीं है कि हमें कौन मिला है, हमें क्या बना रहा है। जितना गहरा निश्चय उतनी ही गहरी अनुभूति, उतना ही गहरा संकल्प, उतना ही गहरा अनुभव, तो उतना ही गहरा, उतना ही पक्का हमारा अमृत वेला। इसलिए दिनचर्या को हम जितना अच्छा बना के रखेंगे, ईश्वरीय मत पर चलते रहेंगे, तो अच्छी दिनचर्या का प्रभाव हमारे अमृत वेले पड़े। कोई अपनी दिनचर्या को कैसा भी बिता ले, गुस्सा करे, झगड़ा कर ले, पर चिंतन में फंसा रहे, यहां वहां का समाचार लेन देन में रहे, तेरा मेरा करे और कहे सवेरे में बैठ के अमृत बेला मैं पावरफुल कर लू। कल्पना कीजिए, मुंबई में मैं गया एक भाई के पास, उसने बुलाया था। मैंने पूछा कि भाई जी कैसा रहता है अमृत बेला, कैसा रहता है? कहते हैं भाई जी अच्छा तो नहीं होता है। मैंने कहा मुरली होती है? कही भैया मुरली भी कभी कभी होती है। मैंने कहा अमृत बेला होता नहीं और मुरली कभी कभी होती, भाई क्या कारण है? प्यार तो बाबा से बहुत है, आपने निमंत्रण दिया, आपके निमंत्रण पर। कहा भैया मैं क्या करूं, मेरे चार बच्चे हैं और चारों बच्चों के लिए मैंने दुकानें खोल दी, एक भी बच्चा जो है वो ठीक ढंग से दुकान पे बैठता नहीं, सब काम चोर है, बैठते ही नहीं। तो मुझे दो घंटा वहां बैठता हूं, दो घंटा वहां बैठता हूं, दो घंटा वहां बैठता हूं। मैंने कहा बाबूजी आपने गलती किया, दो चार दुकान और खोल देते तो आराम से बैठते आप। जब किसी को संगम युग का आनंद लेना है, अगर उसको किसी भी कारण से उसका अमृत वेला नहीं होता है, बाबा की मुरली को भी ढंग से पढ़ नहीं पाता, सुन नहीं पाता है, सच पूछो तो उसको ब्राह्मण कहलाने का हक ही नहीं। मुरली ना हो, अमृत वेला ना हो, तो हम अपने आप को ब्राह्मण कहते फिरें? ये संभव नहीं। इसलिए हमारी ब्राह्मणों की दिनचर्या का फाउंडेशन है अमृत वेला। और मैं अमृत वेले यज्ञ रचता हूं, जब बैठता हूं तो ये सोच के बैठता हूं कि ये जन्मे जय का महायज्ञ कर रहा हूं, ये अमृत वेला अमर बनने का, अमरनाथ से वरदान प्राप्त करने का अमृत वेला वरदानी वेला है। और इसी समय पर माया को पूरा पता है कि अगर इनका यज्ञ संभव हो गया, सवेरे सवेरे का इनका महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं, अगर ये जाप कर लिए, इनका यज्ञ सफल हो गया, इन्होंने पावर ले ली परमात्मा से, बाबा से सब शक्तियां ले ली, तो मेरी दिन की दिनचर्या में दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा अटैक सवेरे अमृत वेले माया का, निद्रा के रूप में, आलस के रूप में, यज्ञ को तोड़ने के, हमको हमारे यज्ञ में विघन डालने के रूप में यहां पर पड़ता है। इसलिए सावधान रहिए, अगर अमृत वेला आलस से आता है, आता ही है, और सवेरे जिसने आलस से मुक्त आनंदमय अमृत वेला वरदानी वेला बना ली, समझो कि वो सफल हो गया दिन की दिनचर्या। ठीक बात बताई, अच्छा लगा ये बात? तो अभी संकल्प लेंगे आज, कम से कम जितने भाई बहने सुन रहे हैं, आज के शेष अमृत वेले में, मैं ये नहीं कह रहा हूं शेष नहीं रहा, लेकिन जो भी संगम युग का हमारे जीवन का शेष अमृत वेला करने को मिल जाए, उसको शक्तिशाली बनाने का लक्ष्य पक्का करें। सबसे ज्यादा ध्यान रखें दिनचर्या का आदिकाल। अमृत वेला 2 बजे से शुरू हो जाता है, 2 बजे नहीं उठ पाते हैं कोई बात नहीं, कम से कम मुकर्रर जो यज्ञ की तरफ से टाइम है वो है 4 से 4:45 बजे तक का समय। 1.25 घंटा दिया गया है कि और कुछ न करो, लेकिन ये 1.25 घंटा बैठ करके बाबा की याद में लगन में मगन हो जाओ। इस याद की यात्रा को इतना आनंदमय बनाइए कि जिसमें ना आलस्य रहे, ना सुस्ती रहे, ना अलबेलापन रहे, ना व्यर्थ संकल्पों का प्रवाह रहे, ना इसमें कहीं पर इधर उधर की और भी दिनचर्या में और भी जाने की जरूरत रहे, और इस समय पर हम ऐसे ही अनलगल रूप से बैठ जाएं, याद में भी बैठ जाएं और इधर उधर देखते रहें, साधारण संकल्पों में हमारा समय जाए, ये ना होना चाहिए। पूरी ऑनेस्टी के साथ, वफादारी के साथ, सवेरे बाबा ने हमको अपॉइंटमेंट दिया है तो बाबा के प्रेम में समाने के लिए संकल्प बना लें कि सवेरे सवेरे मैं ये यज्ञ रच रहा हूं बाबा के साथ में। रात को सोने से पहले जिसने अपने सब संकल्प बाबा को दे दिए, सोने से पहले सबसे क्षमा ले लिया, सबको क्षमा दान दे दिया, सोने से पहले बाबा की मुरलियों का, अमृत वेले की किताब है या कोई भी, बाबा की मुरली के कुछ पॉइंट्स को पढ़ लिया, और रात को सोने से पहले जो हमारा रात्रि का जो भोजन है वो अगर हम भोजन लेते हैं तो अर्ली ले लें, जितना जल्दी ले लें उतना अच्छा है, और जितना कम लें और अच्छा है, जितना सुपाच्य लें और अच्छा है, और अगर भोजन रात का छोड़ दें तो और अच्छा है। एक रात का भोजन छोड़ देने से शरीर कोई छोड़ेगा नहीं, लेकिन पक्का है कि अगर आपने अमृत वेले के रात के भोजन को आपने अगर इग्नोर कर दिया, उसको छोड़ दिया, तो आप देखेंगे अमृत वेला आपका शक्तिशाली होना ही होना है। भोजन का बहुत असर पड़ता है, और ब्राह्मणों के लिए भोजन छोड़ना आप जानते हैं कितना कठिन काम होता है, हैं? आज बाबा ने सीधा बोला है कि खान पान की बड़ी परहेज रखनी, बड़ा लालच नहीं रखना है। तो हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कितनी देर से खाते हैं, इनका ध्यान देना बहुत जरूरी। यदि अमृत वेले का आनंद लेना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कर सकेंगे? मुश्किल काम तो नहीं है? मुझे नहीं लगता है दिल्ली वालों के लिए मुश्किल काम है। हाथ उठाए सब कोई, पक्का पक्का है, पक्का भाई? हमारे देखो डॉक्टर साहब भी उठा रहे हैं, सब उठा रहे हैं हाथ। हाँ, सब हाथ उठा रहे हैं। ओके, एक बार ताली बजा के अभिनंदन कीजिए। बहुत तो आइए एक शक्तिशाली अमृत वेला के लिए जब आप बैठें याद में, तो सबसे पहले आपका जो बैठक है, आपका जो आसन है, यूं तो बाबा हट के लिए नहीं कहते हैं लेकिन सहजासन, ताकि आपको ये लगे मैं किस लिए बैठा हूं, ये भी ध्यान में रहे। तो एक विशेष आसन, जैसे मेरे डॉक्टर साहब बैठे हैं, जिसे बच्चा बैठा है सामने बैठा है, जितना हो सके हमारी बैठक ऐसे, बैठ सके तो बैठे, जो बैठ सके भाई बहने। ये आसन इतना अच्छा है कि जिसको भी आलस्य लगती हो, आलस्य आता हो, सुस्ती आती हो, वो इस आसन बैठे। हमारी जो रीढ़ रज्जु है ये भी सीधा बैठे, सीधा बैठ सके ऐसे, सामने देखें, सामने देखें, और जहां पर आप बैठते हैं सामने बाबा को देखें, कुछ देर के लिए निर्निमेश दृष्टि से, अपलक दृष्टि से प्यारे बाबा को देखें, निहारें बाबा को, बाबा से दृष्टि लें। ये पोजीशन आपको लंबे समय तक सुस्ती से, आलस से मुक्त रखेगा। तो प्रथम ये है आसन। अगर नहीं बैठ सकते हैं थोड़ा थोड़ा ट्राई करें, बैठने बैठने से अच्छा होगा, कम से कम थोड़ा हल्का हल्का दर्द होगा तो कम से कम जागे तो रहेंगे, इसी बहाने हमको जागृत होने में अच्छा रहेगा, मदद करेगा। मैं तो इसमें बैठता हूं तो बड़े लंबे समय तक बैठता हूं और बैठे रहता हूं इसमें, बहुत सहज आसन। दूसरा कि घरों में अक्सर करके हम सब लाल लाइट जलाते हैं, बहुत लाल लाइट का भी फोबिया कई भाई बहनों को हो जाता है कि लाल लाइट हुई नहीं कि बस दूसरे परमधाम की यात्रा शुरू हो जाती है। होना तो चाहिए कि जरा भी अगर आपको आलस लगता है तो कोई जरूरी नहीं कि लाल लाइट करें, आप व्हाइट लाइट में ही बैठें, सफेद लाइट में बैठें, लेकिन आनंद लें, रूखा नहीं होना चाहिए। या तो सुस्ती वाला हो जाता है या तो बड़ा कठिन वाला योग हो जाता है। याद की यात्रा हमारी इतनी मनोरंजक हो, इतनी रमणीकता पूर्ण हो, इतना आनंददायक हो कि उसमें शक्ति आ जाए, प्रेम की शक्ति हो जाए। तो लाइट हमारे पास नेचुरल हो, बहुत अगर थोड़ा थोड़ा कम होगा, लाइट बहुत कम होगी तो भी नींद आ जाएगी, थोड़ा भी अंधेरा हुआ तो नींद आने की ज्यादा संभावना, लाल लाइट हुई उसमें भी नींद आने की संभावना होती है, और बहुत बहुत लाइट रही पूरी तो पता भी नहीं लगेगा हम योग के लिए बैठे हैं या नहीं भी बैठे हैं। इसलिए प्रकाश का, ध्वनि का गीत बजा दे, कुछ अच्छे अच्छे गीत बजा दे, लेकिन सवेरे के हमारी ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि जैसे मैंने यज्ञ रचा है। इसको आलस्य से मुक्त रखना है। कुछ दिन तक आपने बिना कोई आलस्य के अगर आपने डांस करते हुए खुशी में आनंद में अमृत वेले को 4 से 4:45 बजे तक पक्का कर लिया तो आप कभी भी याद में बैठेंगे फिर आपको आलस्य नहीं आएगा। लेकिन एक दिन हम सो लेते हैं और एक दिन जागना चाहते हैं तो हमको बार बार फिर नींद आने की ज्यादा संभावना होती है। तो इसलिए शक्तिशाली बनाने के लिए हमारी ये पूर्व तैयारी होनी चाहिए। हम अब भोजन के रूप में, बैठक के रूप में, ध्वनि के रूप में और प्रकाश के रूप में सब तरफ से अपनी तैयारी करें, और जब बैठें तो मैंने जैसे आपको बताया कि लगातार बाबा कुछ देर तक देखें, बाबा को देखें। एक बार शुरू में अभी जब ये अपने सुरेश ओबेराय जी आए तो ओम शांति भवन में मैं बैठा था, बगल में दादी जानकी जी बीच में बैठी थी और बहनें बैठी थी, तो वो आए सवेरे अमृत वेले योग किया, ज्ञान सरोवर से भाई लेकर आए थे उनको। फिर जब शाम को दादी का क्लास था और क्लास के बाद निकलने लगे तो परिचय कराने लगे, हमारे सतीश भाई हैं, ये यहाँ के गीतकार हैं, सब कुछ बता। कहा भाई आप वही हैं जो सवेरे बैठे थे क्या? मैंने कहा हाँ हाँ। कहा कमाल कर दिया, आप तो ऐसे बैठे थे, मैं तो आपको ही देखता रह गया। तो मैंने कहा भी देखो फिल्मों के लोग हैं, हमने कुछ कोई कुछ नहीं इसके लिए नहीं बैठा, लेकिन उस अपनी लगन में मगन बैठा था तो हमारी बैठक भी अच्छी सेवा कर लेती है। आप बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं आप, कोई कोई बहने कोई कोई भाई ऐसे बैठ करके सो जाते हैं तो उनको पता ही लगता हम यहाँ बैठे हैं, तब तो और विचित्र बात हो जाती है। जब आवाज भी आने लगती है तो लोगों को लगता भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तो अपना तो योग तो जाओ लेकिन दूसरे का भी योग लेकर चले जाते हैं। इसलिए और मैं सच बताऊं आपको, योगी जीवन में, हमारे जीवन में आलस्य का, अलबेलेपन का कोई स्थान है ही नहीं। मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, वो वरिष्ठ भाई हैं, उनके पास समय बहुत कम मिलता है लेकिन अटेंशन कम से कम सामने बैठे तो हैं। मैंने सबको देखा है, मैं दुबई में था वहां पर देखा, 22 किलोमीटर दूर से मैं आया, दादी ने कहा योग कराना तो योग बैठा हूं, इतने देखता हूं 4 बजे नहीं कि दादी कब आई और मेरे से पहले आके दादी बीच में बैठ गई। दादी जानकी का बड़ा ध्यान था कि अमृत वेले के ऊपर बहुत अटेंशन, हमेशा योग कराती रही। दादी का तो संकल्प ये था कि 50,000-1,00,000 दिल्ली में स्टेडियम में सब इकट्ठे हों, दादी वहां योग कराए और मुरली सुनाए, बहुत दिन का संकल्प था दादी का। इतना तो 1,00,000 तो होना बड़ा मुश्किल, वो भी अमृत वेले तो नहीं, मुरली पर भी नहीं हुआ, एक बार दो बार कोशिश की गई। 50,000 है जी, हाँ, जी जी जी। तो दादी का इस संकल्प, दिल्ली वालों ने तो बहुत लगन लगाई है, बहुत अच्छा है, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए आज से संकल्प करें कि एक शक्तिशाली अमृत वेला के द्वारा हम पूरे ईश्वरीय परिवार में ऐसी लहर फैलाएं कि जब भी आलस्य लगे आप उठ जाएं, मुंह हाथ धोएं, थोड़ा फ्रेश हों, लेकिन योग में रहकर नींद करने को योग ना माने। कोई नया व्यक्ति आता है हम उसको बोलते हैं कि हाँ हाँ अमृत वेले, मैं मुंबई में था और वहां रविंद्र जैन जी जो म्यूजिक डायरेक्टर जो फिल्मों के माने जाने हैं, दादू कहते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, उनके साथ बैठा, पूछते हैं सतीश जी और क्या क्या है मधुबन में, और क्या क्या है, देखा तो नहीं आग से, यहां आए भी थे, तब उन्होंने गाना लिखा ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन बाबा का आसन है, बाबा सबसे निराले सबको प्यार करने वाले सबके दिलों पर उनका शासन है। तो कहा और क्या है, हमने कहा हम सवेरे सारे भवन सफेद हैं, भाई बहनों के वस्त्र भी सफेद हैं, अमृत बेले चांदनी रात है, उठ करके जब चलते हैं तो सब फरिश्ते नजर आते हैं, तो लिखते चारों ओर सफेदी झलके जैसे चांदनी से छलके हैं, सबके दिलों पे उनका शासन, ऐसे करके गाना लिखा उन्होंने। कहने का भाव ये है कि हम सब अमृत वेले के समय पर इस दृष्टि से कि फरिश्ते बन करके विश्व को परिवर्तन करने की, बहुत आत्माओं को सकाश देने की, सबके संकल्प को पूरा करने की, सब आत्माओं की रक्षा करने की जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, हम कल्प वृक्ष के मूल में बैठे हैं और इस कल्प वृक्ष के मूल को जैसे हम यहां बैठे हैं वतन में, और बाबा नीचे कल्प वृक्ष है, उल्टा कल्प वृक्ष बाबा से पावर मेरे ऊपर आ रही है और पूरा स्ट्रीम जो है वो पूरे जड़ में जा रही है और पूरा कल्प वृक्ष हरा भरा हो रहा है, पूरे कल्प वृक्ष को हम सकाश दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, इसका भरण पोषण कर रहे हैं, इसकी पालना कर रहे हैं, पालित पोषित कर रहे हैं। तो इस तरह से हम संकल्प बैठे तो सवेरे अमृत वेले ये ना बैठे कि मैं बैठूं बाबा आप प्यार के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, दया के सागर हैं, चार पांच सागर किया उसके बाद फिर छुट्टी होगी, नहीं नहीं, उस समय हम बैठे बाबा के पास तो बैठे ही हैं, बाबा से तो मिल रहा है, देने का सोचे। मां बाप सो रहे हैं और बाल बच्चे रो रहे हैं, ये नहीं, सवेरे इस दृष्टि से बैठे कि मुझे सारे विश्व की पालना करनी है। जितना हम अशरीरी बनकर के बाबा के प्यार में लवलीन होकर के बैठेंगे, उतना ही समझिए कि बाबा हमारे इन शरीरों को लेकर सूक्ष्म शरीरों के माध्यम से कितने आत्माओं को साक्षात्कार करा रहे हैं, बाबा कितनी आत्माओं की पालना कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे सवेरे बैठो, बाबा के प्यार में याद में बैठो और अशरीरी बन के बैठो, साक्षात्कार मूर्त बन करके बैठो, तो आप केवल याद नहीं कर रहे हैं, अमृत वेला में केवल बैठे नहीं बल्कि विश्व सेवा कर रहे हैं, सकाश दे रहे हैं, सबकी पालना कर रहे हैं। तो इस तरह सवेरे अमृत वेले जब हम बैठे तो पूर्व तैयारी करने के बैठे। अब मैं आपको कुछ और बातें बता रहा हूं। अमृत वेले जब हम बैठे तो तीनों स्वरूप हमारा बड़ा अच्छा होना चाहिए। पहला स्वरूप तो यह है कि जब हम बैठे तो आत्मिक स्टेज हमारा बहुत ही शक्तिशाली हो। मैं इसको स्वराज अधिकारी बनने की बात कहता हूं। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो पहला सब्जेक्ट है जिसमें आत्म अभिमानी बनने का जो पहला पाठ है, आत्म परिवर्तन की जो प्रयोगशाला है उसमें जब हम बैठे तो आत्म चिंतन करें। मैं आत्मा अपने चिंतन अपने बारे में चिंतन करूं, आत्म मंथन करूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं कौन सी आत्मा हूं, विशेष आत्मा हूं, आत्म मंथन हो, आत्म दर्शन हो, मैं आत्मा हूं तो मेरा रूप क्या है, मैं किस तरह की आत्मा हूं, मैं कितनी चमकदार हूं, उसका रंग क्या है, उसका रूप क्या है, जितना आकर्षक है उतना आत्मदर्शन करूं। फिर आत्मविश्लेषण करूं कि मैं आत्मा अलग हूं, शरीर अलग है, मैं ये तमो प्रधान आत्मा है, मैं सतो प्रधान आत्मा हूं, मैं आत्मा तमो प्रधान हूं तो सतो प्रधान बनना है, वो दोनों का मैं विश्लेषण करूं, अलग अलग अपने आप को विश्लेषण करूं, इसको कहते हैं आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस करें। फिर आत्म अन्वेषण करें, अपने गहराई में जाएं, अपनी आत्मा की गहराई में जाएं, संस्कारों का अन्वेषण करें, मेरे अंदर संस्कार कितने अच्छे अच्छे हैं, मेरे संस्कारों का रूप क्या है, वो संस्कार कितने हैं। वहां बोर्ड लगा है उसमें दिव्य गुण लिखें, एक तरफ आसुरी गुण है एक तरफ दिव्य गुण है, वो 36 गुण कौन कौन से हैं उसको देखते जाइए, वो ये गुण मेरे अंदर कितने हैं उसको टिक करते जाइए, और अगर आसुरी गुण है उसका विपरीत आसुरी गुण है, अगर वो है तो शुरू में लगेगा कि मेरे अंदर आसुरी गुण नहीं है, लेकिन अगर गहराई में जाओ तो लगेगा कि ये भी है ये भी है ये भी है। बाबा कहते हैं बच्चे कोई भूल नहीं करते, गलती नहीं करते, लेकिन सबसे बड़ी भूल तो यही है कि बाबा को भूल जाते हैं, भूलने की भूल करते, गलतियां तो बहुत होती, इसलिए हम शक्तिशाली बनकर के अपने आप को चेक करें। इसको कहते हैं आत्म अन्वेषण करना, आत्म विश्लेषण करना, फिर आत्म निरीक्षण करना। अपने आप को देखें, निरीक्षण करें, निरीक्षण करें, गहराई में जाएं, चेक करें। प्रयोगशाला में निरीक्षण है, परीक्षण है, संशोधन है, तब उसका परिवर्तित रूप होता है। तो आत्म निरीक्षण करें, फिर क्या करें, आत्म परीक्षण करें, मेरे अंदर कितनी ताकत आई। एक कॉलम बना लें, शक्तिशाली आत्मा के लक्षण और शक्तिहीन आत्मा के लक्षण। 10 पॉइंट लिखें, आपको होमवर्क देता हूं। शक्तिशाली आत्मा सोचती बहुत कम है लेकिन करती ज्यादा है, और जो शक्तिहीन आत्मा है बहुत सोचती है और होता कुछ भी नहीं। ऐसे जो ज्यादा बोलता है वो शक्तिहीन है, जो कम बोलता है वो शक्तिशाली आत्मा है। जो प्लानिंग करके काम करता है वो शक्तिशाली आत्मा है, और जिसकी प्लानिंग कुछ है नहीं, जो हो रहा कर रहा है, वो शक्तिहीन आत्मा है। जो चाहता कुछ और है, होता कुछ और है, वो शक्तिहीन आत्मा है। और जो शक्तिशाली आत्मा है, जो सोचता है वो बोलता है और वही करता है। इस तरह के हम अपने से विश्लेषण करें और सोचें कि मैं कितनी शक्तिशाली आत्मा। ज्ञान सुनते सुनते क्या ज्ञान का बल जमा हो रहा है? मैं 50 साल से ज्ञान में हूं, क्या 50 साल से ज्ञान भी मेरे अंदर है, या मैं ज्ञान में हूं या ज्ञान मेरे अंदर है? मैं योगाभ्यास कर रहा हूं, परिचय में देते हैं ना, हमारे भाई हैं इतने वर्ष से राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो मैं अंदर अंदर हंसता हूं, कितने साल से अभ्यास करता हूं, अभी भी योग में बैठता हूं तो झुटका खाता हूं, अभी भी याद बैठता हूं तो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, अभी भी याद में बैठता हूं तो बाबा तक पहुंचता ही नहीं, जाने की कोशिश करता हूं, अभी भी बाबा की याद में बैठता हूं तो जो पावर लेना चाहिए पावर ले नहीं पाता हूं, अभी भी जब भंडारे में जाता हूं खाना चाहता हूं ये खा कुछ और लेता हूं, पहले तो सोचता हूं नहीं खाऊं, कहा चलो देखने में कोई हर्जा नहीं, वहां गए खुशबू आई पहुंच गए, चलो थोड़ा ले लेता हूं, जब थोड़ा लेने के लिए पहुंचे तो देखा जलेबी है ये है, एक भी लेना था, देखा तो लालच आई तो दो ले लिया, अब दो लेने के बाद मन कहा तो एक और ले लूं, मिल जाए तो एक और ले लूं। ये कहां है? हम ब्राह्मण कर क्या रहे, क्या अभ्यास कर रहे हैं, जाना कहां है, पहुंचना कहां है? अपने जरा गहराई से देखें, हमने इतने वर्ष तक राजयोग का अभ्यास किया, हमने स्वराज अधिकारी बनकर किया क्या? तंबाकू छोड़ा, बीड़ी सिगरेट छोड़ा, ब्रह्मचारी हो गए, घर बार छोड़ा, कपड़े छोड़ दिए, ये ड्रेस बदल किया, ये नहीं है। हमारे इमोशंस, हमारी भावनात्मकता पर, हमने काम पर कितने काम जीत बने, क्रोध जीत कितने बने, लोभ जीत कितने बने, आसक्तियों से कितने उपराम हुए, मोह जीत कितने हम बने, अहंकार से कितना शून्य बने, मैपन कितना समाप्त हुआ, मेरापन कहां तक गया? अरे जरा गहराई में देखें तो हम कहां हैं? बाबा हमको कहां ले जाना चाहता है निरंतर योगी बनाने के लिए? और हमारी याद का चार्ट 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, चलो मुश्किल से किसी का 6 घंटा होगा, निरंतर योगी कब बनेंगे? जब अभी नहीं बने तो किस दिन की इंतजार कर रहे हैं, कब बनेंगे? आत्मविश्लेषण करें, गहराई में जाए। मेरे भाइयों और बहनों, अपने को खुश करने का नहीं कि मैं इतना योग्य हूं, मैंने ये कर लिया वो लिया, योग्यता ग्रहण करें। जिनके पास योग्यता है वही योगी है। तो अमृत वेले बैठें, आत्म चिंतन करें, आत्म मंथन करें, आत्म दर्शन करें, आत्म विश्लेषण करें, आत्म अन्वेषण करें, आत्म निरीक्षण करें, आत्म परीक्षण करें, आत्म संशोधन करें, आत्म परिमार्जन करें, आत्म परिवर्तन करें। बड़ी गहरी प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला में बैठो इतना आनंददायक है, मैं तो इसके ऊपर बहुत ढेर सारा मंथन करता हूं। तमाम गीत लिखे शुरू में, ऐ आत्मन अंतर की निगरानी तू कर अपनी, राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी, फिर भ्रकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे पलकें उठाकर निहारा करूं, बाबा मेरे मन के मंदिर में तुमको बिठाकर मिलन में मनाया करूं, कभी तन में आऊं कभी तन से जाऊं, जाऊं वतन या वतन को ही लाऊं। जैसे प्रयोग तन के भव्य विभाल पर विराज रहा मैं जगमगाती, मैं झिलमिलाती, सदा मुस्कुराती, मैं मस्तक मणि हूं। अभी बैठ जाए एक स्वरूप थोड़े देर के लिए, आप चिंतन कर ले मेरे साथ स्वराज अधिकारी बन करके, आंखों को हल्का करें और महसूस करें, मस्तक सिंहासन बैठ जाए, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्म इंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाए, करें मंत्रणा अपने मन मंत्री से, समाचार पूछें सजग संतरी से, बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, ऐसे करें अपने भ्रिकुटी के यहां पर इस तरह हाथ रखें, यहां फील करें जैसे मैंने यहां पर अपनी न्यायपालिका बनाई है, बुद्धि रूपी मुंसिफ जज यहां बैठकर जजमेंट देता है। बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी, सुखी जनता सारी, सुसंस्कारों की सेना सजग है, जो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाएं, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए। अपना हाथ रखें सिर पर, दाहिना हाथ, और फील करें जैसे बाबा के वरदानी हाथ किरणों के रूप में आए और मेरे सिर पर वरद हस्त पड़ गए। मैं इन वरदानी हाथों के नीचे सदा सुरक्षित हूं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, जो खोया था स्वराज फिर से दिलाया, उपकार उसने किए हम पे इतने कि आभार धरती गगन मिलके गाएं, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। ये प्रयोग बीच बीच में जब भी दिन की दिनचर्या में जब भी मौका मिले ऐसे करके अपने हाथ सर पे यहीं रख करके ये फील करें जैसे बाबा ने वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। ऐसे हम सोचते तो हैं लेकिन जल्दी भूल जाते हैं। जब थोड़ा सा अपनी बॉडी लैंग्वेज भी बोलती है कुछ ऐसा करते हैं तो बीच बीच में ऐसे करें 15 बार दिन भर में, अगर एक बार कर लिया 15 बार दिन भर में बीच बीच में, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, नहीं तो लोग सोचें कि मम्मी को क्या हो गया, बहनों को क्या हो गया इनको, है? बल्कि इसको आंतरिक रूप से अपने पुरुषार्थ में शामिल कर लें तो ये आपको बहुत मदद करेगा। दूसरा, अमृत बेला शक्तिशाली बनाने के लिए स्वमानधारी बन जाए। पहला संकल्प हमारा इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि उठते ही लगभग 5 से 10 मिनट हमारी दिनचर्या का आदिकाल, सवेरे उठते ही इस संकल्प के साथ उठें कि जैसे आंख खुली और मैं रात को बाबा की गोद में शरीर छोड़ा था, बाबा की गोद में सोया था और बाबा मुझे उठा रहे हैं, अमृत वेले जगा रहा कोई और मस्तक पर तिलक दे रहा है बाबा, अपनी गोद में बिठा रहा है, मुझे श्रृंगार कर रहा है, तैयार कर रहा है और पीठ थपथपा रहा है और कहता है बच्चे आज मेरी जगह पर तुम जाओ, और बाबा मुझे वतन से भेज रहा है, मैं चारपाई से नहीं उतर रहा हूं बल्कि मैं शक्तिशाली शिव शक्ति अवतार हूं, मेरा अवतरण हो रहा है। तो रोज आप नीचे से ऊपर जाते हैं लेकिन रोज आपको आज से लेकर अपनी दिनचर्या का आरंभ वतन से अवतार लेकर के करना है। आप देखना ये एक ऐसा सूत्र है कि नीचे से ऊपर आप कितना भी जाएंगे नीचे ही आएंगे, और रोज ऊपर से आएंगे तो ऊपर जाने में बड़ा आराम मिलेगा, आसानी हो जाएगी। तो रोज ये सोचें, अपने साथ 20 बार 25 बार ये अभ्यास कर लें कि मैं अवतरित हुई आत्मा हूं, मैं शिव शक्ति अवतार हूं। एक बार फिर से कर लें, ऐसे ऐसे वरदानी हाथ कर लें, वरदानी हाथ, इसी पोज में बैठे, मैं शिव शक्ति अवतार हूं, बोलिए, मैं शिव शक्ति अवतार हूं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, मैं महान हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं महान हूं, मैं मेहमान हूं। ये संकल्प करें, ये संकल्प आपको बहुत मदद करेगा। और लगे हाथों आपको पांचों स्वरूपों का अभ्यास भी करा देता हूं। ये अभ्यास दिन भर में करते रहें, आपको बहुत मदद मिलेगी। जब से मैं खुद करता हूं और यही कराता हूं, प्रायः हर क्लास में बताता हूं, बहुत अच्छा है। आप इसको दिनचर्या में आप इसको शरीक करें, शामिल करें, आपको बहुत मदद करेगा। जैसे मैं करूं, आप भी कहें, कहें भी और करें भी। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा यहां पर हूं और परमधाम में, फिर मैं देव प्यारा सतयुग में पहुंच जाइए, फिर मैं पूज्य न्यारा द्वापर युग में, मैं ब्राह्मण दुलारा संगम युग में, और फिर अपना लक्ष्य, मैं फरिश्ता आया और गया, आया और गया। ये पक्का करें, दिन भर में 25 बार 50 बार कर लें, इतना अच्छा मनोरंजन सेकंड सेकंड में आपको बहुत शक्ति देगा। एक बात पक्का नोट कर लें, अमृत वेले को शक्तिशाली बनाने के लिए अपने आगे विश्लेषण दें कि जो आलस्य है, आज से आलस्य मुक्त मुझको अमृत वेला बनाना है, तो उसके लिए अपने बुद्धि में रखें, एक मां का युवा पुत्र अगर एक्सीडेंट में शरीर छोड़ देता है या कहीं कुछ होता है इस तरह, तो उस मां की नींद कहां उड़ जाती है? सोचो, मां को नींद आती है? कोई बताए, मां को नींद आती है? कितने समय तक मां को नींद नहीं आती? क्यों नींद नहीं आती? और हमारा तो बाबा से बड़ा प्यार है, बाबा तो बच्चा है, हैं? फिर नींद क्यों आती है? उसको याद करने बैठते हैं। सोचिए, दुनिया में एक दूसरे के प्रेमी होते हैं, प्रेमी प्रेमिका, उनका जब प्यार होता है तो तू अगर मिल जाए तो दुनिया छोड़ देंगे हम, बड़े कस्में लेते हैं, रात को तारे गिनते हैं, उनकी नींद उड़ जाती है। फिर हमारा तो बाबा से बड़ा प्यार है, हमारी नींद क्यों आती है हमको? ये विश्लेषण करें। तीसरा, जब बाबा कहते हैं ना, दुकान चल रही है, माल बिक रहा है, स्टीमर आ रहा है, जा रहा है, माल डिलीवरी हो रही है, तो नींद थोड़ी आती, और हमको तो रत्नों की कमाई होती है, फिर हमको नींद क्यों आती? दुनिया में दुश्मन होते हैं तो दुश्मन रात को भी दिखाई पड़ता, दुश्मन ना आ जाए, बंदूक लेकर बैठे रहते हैं, अंधेरे में भी दिखाई पड़ता दुश्मन कहीं ना आ जाए, आंखें खुली रहती हैं, सजग, फिर माया तो चारों ओर है, फिर हम सोए कैसे रहते हैं? ऐसे ऐसे विश्लेषण करें, ये जितना भी आलस्य है, क्या करूं, रात को मच्छरों ने काटा, क्या करूं, नींद नहीं आती, क्या करूं, दवाइयां लेना पड़ता है, बहुत बहुत वो होता है, नींद आती, ये सब बहानेबाजी है। ज्ञान में कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं, बैठो, पौना घंटा करो, आनंददायी योग करो, योग ऐसा करो कि जो आपको देखे उसका योग लग जाए। एक सफल योग के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मौका मिला फिर आपको मिलेंगे और बात करेंगे।
बहुत बहुत आभार सतीश भाई जी, आपने कैसे जागती ज्योत बन करके अमृत वेला पावरफुल बनाना है, विद एक्शन आपने सभी को सिखा दिया। लेकिन लोगों के बीच में नहीं करना ये एक्शन, नहीं तो कहेंगे क्या हो गया इनको, मधुबन से जाके आए ये क्या करने लगे। हुँ? घर में सभी ज्ञानी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब अकेले हो तो उस समय जरूर ये एक्शन करना। कहने का तात्पर्य, लाइट चालू हो और खड़े होकर के योग कर लेना जब नींद आती हो तो, नहीं तो जैसे पोजीशन बताई है ना उस पोजीशन में योग करेंगे तो और ही अच्छा रहेगा। पर नींद आती हो तो बैठना नहीं बिल्कुल भी, खड़े हो जाना। तो अमृत वेला पावरफुल करेंगे तो सारा दिन तो अपना श्रेष्ठ जाएगा ही। बहुत बहुत थैंक्स, शांति।